surgió me.
नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लोकतंत्र के सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार लोहानी, पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव। लोहानी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार।
लोहानी जी, सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं और लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस होता है वो आज कितने अहम और कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे इस लोकतंत्र में। तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे कि आप हमें पंचायती राज संस्थाएं जब से शुरू हुई और उनकी जो यात्रा है अभी तक की, उसे लेकर के हमें बताएं कि इसका इतिहास कैसा रहा है।
भारतीय संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था कि स्टेट्स विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करेंगी, उनको पावर देंगी ताकि वो यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तरह फंक्शन कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इतना ही प्रावधान दिया था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, किंतु इसकी जब तक विस्तृत व्याख्या नहीं की जाएगी तब तक पंचायती राज सिस्टम को सेटअप करना मुश्किल था। तो इसलिए 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, संविधान का 73वां संशोधन हुआ, जिसमें एक आर्टिकल 243 ऐड किया गया इन पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के थ्रू पंचायती राज व्यवस्था की व्याख्या की गई, जिसमें बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होंगे। इसके अलावा ग्राम सभा को स्वीकृति मिली कि ये इट विल बी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और इलेक्शंस की बात की गई, इलेक्शंस में रिजर्वेशन की बात की गई, जिसमें एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन और एक तिहाई रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, इसकी व्यवस्था की गई। और ये भी बोला गया कि यदि स्टेट चाहे तो इसको 1/3 को 50% तक बढ़ा सकता है। टर्म की घोषणा की गई कि हर एक इलेक्टेड बॉडी 5 साल तक के लिए रहेगा। इसके बाद इनको पावर दिया गया कि ये आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के ऊपर कार्य करेंगे। इनको टैक्स कलेक्शन करने का पावर दिया गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन करने के बारे में बताया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन करने के बारे में बताया गया ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। और 29 सब्जेक्ट्स जो कि पंचायत को ट्रांसफर करने हैं उसके सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताया गया। तो एक बार जब एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो उसके बाद एक पंचायती राज व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा तैयार हुई। उसके बाद स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में के थ्रू स्टेट को बताया गया कि आप अपने स्टेट में एक्ट एंड रूल पारित कीजिए ताकि इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसी तरह पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ और उसके बाद सारे स्टेट्स ने एक्ट बिल्स पास करने शुरू किए।
लोहानी जी, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कई सारी ऐसी संस्थाएं स्थापित की गईं जो आधुनिक भारत के निर्माण में जिसने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें कि पंचायती राज संस्थान एक ऐसी संस्था है जो कि खास करके ग्रामीण इलाकों में और स्थानीय निकायों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। आपने भी जैसा अभी बताया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि किस तरह से ये काम करके हमारे प्रगति को, हमारे विकास को आगे बढ़ा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितना अहम भूमिका निभा रहा है पंचायती राज संस्थाएं, खास करके जब हम बात करते हैं कि लोकल गवर्नेंस, स्थानीय निकायों की बात करते हैं, तो उन्हें मजबूत करने में ये किस कदर और किस हिसाब से ये भूमिका निभा रहा है।
जैसा मैंने बताया कि सारे स्टेट्स ने अपने एक्ट्स और बिल्स पास किए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सभी जगह सेटअप हो चुका है, इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ। उसके बाद पंचायती राज जो कानून बने स्टेट्स के, उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी व्याख्या की गई। पंचायतें भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमों के जो गाइडलाइन बने उसमें पंचायतों की भूमिका के बारे में भी वर्णन किया गया है, कैसे बेनिफिशियरी सिलेक्शन हो या प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हो या प्रोजेक्ट का अप्रूवल हो, ग्राम सभा ग्राम पंचायत में कैसे पारित किया जाएगा उसके बारे में डिटेल गाइडलाइन आई। सर्विस डिलीवरी का हब बना है पंचायती राज संस्थान, पर्टिकुलरली ग्राम पंचायत में ढेर सारे पावर्स फंक्शंस डेलीगेट किए गए ताकि ग्रामीणों को कई सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्राप्त हो सके। डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तृत उपयोग किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन सर्विसेज भी पंचायत दे सके। उसके अलावा जो एक था कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बारे में जो पंचायतों को दायित्व दिया गया था, उसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जिला परिषद स्तर में एनुअल प्लान, वार्षिक प्लान तैयारी होता है और उस प्लान के मुताबिक कार्य भी किए जाते हैं। तो जो जो प्रावधान दिए गए थे अलग अलग स्तर पे उसका बाय एंड लार्ज सारे स्टेट्स में अब उसका पालन किया जा रहा है।
लोहानी जी, हम जानते हैं कि खास करके पिछले 13 वर्षों में केंद्रीय सरकार ने ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कि भारत के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाया है। और जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का सवाल है तो हम इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, खास करके तब जबकि पंचायती राज संस्थान आम आदमी की सहूलियत, आम आदमी को मजबूत करने से जुड़ा हुआ हो। जहां तक आम आदमी का सवाल है और खास करके ग्रामीण इलाकों में अगर हम बात करें तो पंचायती राज संस्थानों ने हमारे इस कॉज को या इस फ्यूचर को जिसे कहते हैं कैसे इसको फर्दर करने में अपनी भूमिका निभाई है?
जैसे मैंने बताया कि पंचायतों को यदि काम करना है तो उनके पास तो एक तो आर्थिक व्यवस्था होनी जरूरी है, उनके पास फंड होने जरूरी है। तो इस संदर्भ में यदि आप देखें लास्ट 12-13 सालों में, उसके पहले जो पंचायती राज संस्थाओं को जो फंड ग्रांट दिए जाते थे जनरली वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट होता है, फिर स्टेट अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट देती है। जहां तक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट का सवाल है जो कि केंद्र सरकार देती है, पिछले 13 वर्षों में यदि आप देखेंगे 2010 से 15 के बीच जो 13 फाइनेंस कमीशन के पीरियड का, उस पीरियड का आप देखेंगे करीब 65,000 करोड़ डिवॉल्व किया जाता था पंचायतों को, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन जो कि 2021 से 25 तक का काल था उसमें 2,35,000 करोड़ दिया गया। 16 फाइनेंस कमीशन जो कि 2025-26 से 31 का पीरियड है उसमें 2,35,000 से बढ़ाकर 4,35,000 किया गया। तो कई 7-8 गुना वृद्धि हुई है जो पैसे पंचायत को जाएंगे, जो ग्रांट्स पंचायत को जा रहे हैं। पैसे आएंगे तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और उसके लिए हमने बहुत विस्तृत रूपरेखा तैयार की है कि कैसे पंचायत अपनी प्लानिंग कर सकेंगे। प्लानिंग में हमने 9 थीम के बेसिस पर प्लानिंग किया है ताकि महिला बाल हितैषी पंचायत बनाए, महिला हितैषी पंचायत बनाए, अपना वाटर कंजर्वेशन में काम कर सके, सैनिटेशन में, ड्रिंकिंग वाटर में काम कर सके। इस तरह हमने प्लानिंग को काफी स्ट्रीमलाइन किया है ताकि अलग अलग क्षेत्रों में वह अपनी योगदान दे सके। हम रेगुलर बेसिस में पंचायतों के साथ, पंचायती राज संस्थाओं के साथ वर्कशॉप्स करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के इनिशिएटिव लिए हैं ताकि उनकी अपनी कैपेसिटी टू डिलीवर बढ़ सके। हमने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके हमने अच्छा सा एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ERP सिस्टम है, जो इतने जो फंड जाते हैं उनकी ठीक मॉनिटरिंग हो सके, फंड ठीक से खर्च हो सके, उनकी ऑडिटिंग हो सके, अकाउंटिंग हो सके, हमने सारी व्यवस्था तैयार की है ताकि पंचायतें ठीक से फंक्शन करें, सर्विस डिलीवरी ठीक से कर सके और गांव के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके।
जी लोहानी जी, पंचायती राज संस्थाएं किस तरह से हमारे अगर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पावर डायनेमिक्स को कैसे इसने बदला है?
पंचायती राज व्यवस्था की बात होती है तो हम डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात करते हैं। विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जहां पे डिसीजन है केंद्र में ना होके कि राज्य में ना होके गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे। इसके लिए जो अलग अलग गाइडलाइंस बनी है, जैसे फाइनेंस कमीशन ग्रांट जो इतना पैसा जा रहा है कि जो जितनी प्लानिंग होती है वो पंचायत स्तर पे ही होती है, वहां पे ग्राम सभा बैठती है, ग्राम सभा डिसाइड करती है कि अपने गाँव के विकास के लिए किस तरह के काम लिए जाए। तो इसमें ऊपर से कोई चीज थोपा नहीं जाता, गांव के लोग खुद ही डिसाइड कर पाते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स में ग्राम पंचायतों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कई जगह तो फंड भी दिए जाते हैं ताकि इम्प्लीमेंट, जैसे पहले नरेगा बोल के एक स्कीम थी जो कि जी राम जी में कन्वर्ट हुआ, उसमें भी 50% ग्रांट पंचायतों के थ्रू इम्प्लीमेंट होता था, 50% काम। और कई सारे स्कीम है जैसे हमारे पेंशन स्कीम है या और भी कई सारे स्कीम्स है, हाउसिंग स्कीम है, सारे स्कीम्स में जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन है उसकी दायित्व पंचायतों को दी गई है, ग्राम सभा को दी गई है। मैं तो ऐसे कई कम से कम 10-15 ऐसे स्कीम का मैं नाम बता सकता हूँ जिसमें पंचायत का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। इससे जो पहले होता था कि स्टेट से एक लिस्ट चली गई कि क्या प्रोजेक्ट लेने हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक लिस्ट चली गई, या हमारे सीनियर पॉलिटिकल फंक्शनरीज कुछ सजेशन दे दिए, वो अब ना होके पंचायत स्तर पे सारे स्कीम फाइनल होते हैं, प्रोजेक्ट फाइनल होते हैं, बेनिफिशियरी सिलेक्शन होते हैं। बिकॉज ये जो गांव में है पंचायत में, उन्हें पता है उनको अपने गांव के लिए क्या काम करना है, कौन से बेनिफिशियरी है जिनको ज्यादा सरकारी सहायता की जरूरत है। तो पूरा पावर डायनेमिक्स बहुत चेंज हुआ है और ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है पिछले 10-15 सालों में, और ये आप देखेंगे भविष्य में और अधिक से अधिक पावर्स ट्रांसफर होंगे, फंक्शंस ट्रांसफर होंगे पंचायतों को।
पावर डायनेमिक्स की बात हम कर रहे थे, हम ये भी जानते हैं कि कोई भी संस्था हो, कोई भी राष्ट्र हो या प्रदेश हो या स्थानीय निकाय ही हो, अगर हम महिलाओं को उसमें शामिल नहीं करते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि हम पूरी तरह से विकसित या पूरी तरह से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लोहानी जी, आप हमें कृपया बताएं कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी हो रही है जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का सवाल है।
बहुत अच्छा प्रश्न आपका। जैसा मैंने बताया, संविधान में एक तिहाई रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करने का प्रावधान है।
जी,
जबकि आपको प्रसन्नता होगी ये सुन के कि एक्चुअल में आप देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 48-49% महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि इवन जो सीटें रिजर्व नहीं है उनमें भी महिलाएं बढ़ चढ़कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और चुन कर आ रही है। कई राज्यों ने अपने रिजर्वेशन जो 33% उसको बढ़ा के 50% तक ले आया है। इससे तो महिलाओं को एक अवसर मिल रहा है लीडरशिप पोजिशन में काम करने का। दूसरा ये भी हमने देखा है, हमारा अपना अनुभव रहा है कि जहां पे महिलाएं नेतृत्व वाली पोजिशन में है, जहां पे वो लीडरशिप पोजिशन में है, ग्राम सभा में जब महिलाएं सरपंच चेयर कर रही है तो वहां पे आप देखेंगे महिलाओं की संख्या ग्राम सभा में पार्टिसिपेशन उनका बेटर है। ग्राम सभा में महिला और चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज पे ज्यादा डिस्कशन होता है, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में ज्यादा चर्चा होती है ग्राम सभाओं में। वहां पे जो आशा वर्कर है, एएनएम वर्कर है, आंगनवाड़ी सेंटर्स है, महिलाएं होती है, उनके साथ पंचायत का जो कोऑर्डिनेशन है बेटर होता है जहां महिलाएं होती है। वहां पे जो महिला हितैषी या बाल हितैषी जो एक्टिविटीज है अच्छे प्रकार से इम्प्लीमेंट होती है। तो महिलाओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और हम महिलाओं को लीडरशिप क्षमता को और बढ़ाने के लिए हमने उनके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है, जो उनके लीडरशिप क्वालिटीज, उनके जो एस्पेक्ट है पार्टिसिपेशन के लिए, और थोड़ी जो घर में रह जाती है जो शुरू में हिचक होती है उनके हिचक दूर करने के लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल उनके लिए डेवलप किया गया है। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन उनका पंचायती राज व्यवस्था के साथ हो सके।
और महिलाओं के साथ लोहानी जी, हम युवा को भी नहीं भूल सकते हैं। आपने ग्राम सभा की बात की तो ग्राम सभा में युवाओं का काफी बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। हम जानना चाहते हैं कि युवा किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं।
युवाओं का पार्टिसिपेशन ग्राम सभा में होना बहुत जरूरी है क्योंकि नवयुवकों के साथ नई ऊर्जा का संचार होता है, वो नए जनरेशन भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमने देखा है कि जहां युवा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं वहां पे ग्राम सभा बहुत वाइब्रेंट होती है। उनके पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए एक तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है मॉडल यूथ ग्राम सभा। इसमें हम जो अभी युवा 16-17 साल के हैं जो कि 11th-12th में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल्स में हमने एक मॉडल यूथ ग्राम सभा, एक मॉक ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं स्कूलों में, जो कि एक ग्राम सभा होती है जो सारे बच्चे अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उनके इस माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, पंचायती राज व्यवस्था की क्या क्षमता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, गाँव की समस्याओं के बारे में जानने का मौका मिलता है ताकि जब वो वयस्क हो और जब वो सिटीजन बने पंचायत के तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग उनकी बेटर हो और वो बढ़ चढ़ कर ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करे। यदि वो चाहें तो पंचायती राज व्यवस्था में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पीआरआई मेंबर बन सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो कंसेप्ट है कैच देम यंग, वो एडल्ट बनने के पहले ही हम उनको इस व्यवस्था के साथ उनको हम सचेतन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और ग्राम सभा को वाइब्रेंट बनाए। हमेशा हमारा उद्देश्य रहा और हम इस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं।
लोहानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में